ओम श्री साई राम। साई प्रेम वाणी के हमारे आज के प्रसारण में आप सबका स्वागत है। हम आज आप सबके लिए लेकर आए हैं सुमधुर कार्यक्रमों की मनमोहक माला। आज हम भगवान बाबा द्वारा अपने मुंबई स्थित आवास धर्म क्षेत्र की स्थापना दिवस की एक वर्षगांठ के अवसर पर दिए गए दिव्य संभाषण का अगला भाग एवं
दिव्य जीवनी सत्यम शिवम सुंदरम पुस्तिका में वर्णित भगवान बाबा के बाल्यकाल का एक अलौकिक प्रसंग सुनेंगे और इसके साथ ही साथ हम साई का प्यार जीवन आधार कार्यक्रम के अंतर्गत श्रीमती सरिता शर्मा जी के साथ हुई हमारी भेंट वार्ता का एक भाग तथा गान सरिता के तहत एक सूफियाना कवाली भी सुनेंगे।
हम आदर्श जीवन आनंद उपवन प्रोग्राम के अंतर्गत श्री चैतन्य महाप्रभु जी के जीवन काल पर आधारित नृत्य नाटिका का वो भाग प्रस्तुत करेंगे जिसमें वे अपने स्वयं के भगवान श्री कृष्ण का ही अवतार होने का प्राकट्य करते हैं। तो आइए प्रस्तुतियों की शुरुआत करते हैं।
प्रेमावतार श्री सत्य साई में आपका एक बार फिर स्वागत है। आप सुन रहे हैं रेडियो साई का हिंदी प्रसारण साई प्रेम वाणी। आज के इस प्रसारण में सत्यम शिवम सुंदरम नामक पुस्तक में बाबा के दिव्य जीवन के प्रारंभिक वर्षों की उन घटनाओं का वर्णन है जिसमें उन्होंने एक बंधु जो कि मोची का कार्यकर्ता था उस पर अपनी कृपा की वर्षा की और उसके घर में भेंट देकर घर को मंदिर बना दिया।
बाबा जब 16-17 वर्ष के बालक थे तभी से वे आगंतुक भक्तों को हाथ पकड़कर मीठी मधुर वाणी से चेतावनी देकर सुयोग्य अनुमति देकर उनके दोषों को निर्मूल कर मंद मंद मुस्कान से समझाकर कभी कभी गरज कर दुर्बलों की सुरक्षा करते हुए सन्मार्ग पर लाते थे। अपने कुल अपने देश का गौरव बढ़ाने के लिए उन भक्तों को उचित शिक्षा व दिशा निर्देशों का लाभ वे देते थे। ऋण एवं अपयश से दिग्भ्रांत होकर एक भक्त स्वदेश छोड़ पत्नी को त्याग कर रंगून भाग जाने के प्रयत्न में मग्न था। वो मद्रास बंदरगाह पर पहुंचा और टिकट पाने के लिए जेब में हाथ डालता है तो पता नहीं कैसे बटुआ ही अदृश्य था। हताश होकर बेचारा घर वापस लौटा, देखता है बाबा का लिखा पत्र मेज पर पड़ा है। उसमें लिखा था, कायर जब मैं हूं तो भयभीत क्यों होते हो? अपना उत्तरदायित्व निभाए बिना जान चुरा कर भागते हो? चलो गांव वापस लौटो, घर में परिताप करती हुई अपनी सहधर्मिणी को सांत्वना दो, तुम दोनों साथ में पुटपरती आओ। यही आदेश था बाबा का। वो भक्त अचंभित था कि बाबा मेरे घर का पता कैसे जानते हैं। आह कैसी है उनकी अपार करुणा, सर्वज्ञ शक्ति, धिक्कार है मेरे जीवन पर। भगवान का त्याग कर मैं कैसे जीवित रह सकता हूं, वायु के बिना कैसी सांस। कहते हुए वो वापस लौटा। वह पत्र आज भी उसने जतन से संभाल रखा है। बाबा के स्पर्श से पीतल सोना बन जाता है, कांच का टुकड़ा माणिक बनता है, मानव माधव भी हो सकता है। यही है बाबा की अद्भुत रहस्य विद्या। 10 लोगों से संभाषण करते समय बाबा का ध्येय उनके अंतःकरण की शिक्षा का ही होता है। बाह्य व्यवहार नहीं अपितु भावना ही श्रेष्ठ है, बाबा ये कहते। ये सब केवल शो अर्थात दिखावा है, ऐसी आलोचना भी बाबा कभी कभी करते। पुस्तकों का कितना भी अध्ययन क्यों न हो, पर जब तक मस्तिष्क में कुछ नहीं गया तब तक सब निष्प्रयोजन व्यर्थ है। तुम्हारे पठन ने तुम्हें कितने अंश तक सुधारा है, उसे तुम आचरण में लाते हो या नहीं, ये सब प्रश्न करते। स्वनिंदा नहीं करनी चाहिए, भय से निष्क्रिय हो नहीं बैठना चाहिए, अपने अंतर्यामी भगवत चैतन्य का स्मरण करना ही यथेष्ट है। मन में शांति हो जाएगी, साहस बढ़ेगा, स्वप्न सत्य में परिवर्तित हो जीवन सरल बनेगा। यही है बाबा का उपदेश। बाबा के अपार ज्ञान, अतुल शक्ति तथा अतीव करुणा से अवगत भक्त सदा के लिए उनके अनुयायी बन उनके उपदेशानुसार अपने जीवन पथ को धर्म मार्ग की ओर प्रवृत्त करते हैं। करुणा के सागर बाबा की व्याख्या करते समय बेंगलोर की एक घटना याद आती है। कैंटोनमेंट इन्फेंट्री मार्ग पर स्थित एक बंगले में एक दिन बाबा पधारे। उस कोठी के मुख्य द्वार के सामने सड़क के किनारे एक गरीब मोची बैठा हुआ था। राहगीरों की चप्पल आदि की मरम्मत करते हुए वह भक्तों की चहल पहल देख रहा था। फल फूल आदि लेकर नए वस्त्रों से सुसज्जित भक्तगण आपस में चर्चा कर रहे थे। मैं बाबा को नमस्कार करके आया हूं, बाबा ने मुझे विभूति दी। बाबा ने मेरी ओर देखा, मुझे बुलाकर मुझसे बोले। इस प्रकार सब अपने अपने अनुभव सुना रहे थे। उस मोची के मन में भी अंदर जाकर बाबा के दर्शन करने की इच्छा हुई। उठकर मुख्य द्वार पार कर उस कोठी की देहरी के पास से ही नम्रतापूर्वक डरते हुए भीतर की ओर झांक कर देखा। आह, कैसा मनोहर दृश्य था। मालाओं से अलंकृत साक्षात बाल कृष्ण ही उस कुर्सी पर विराजमान दिखाई दिए उस मोची को। किंतु ये क्या, बाबा उठकर उसकी ओर आए, उससे बात भी की। कोठी के सामने स्थित गुलाब के पेड़ से तोड़कर लाया हुआ पुष्प उन्होंने उससे ले लिया। क्यों भाई, तुमको क्या चाहिए, तमिल भाषा में प्रश्न पूछा। मोची को कुछ सूझा ही नहीं, उसने सोचा भी नहीं था कि बाबा उसके पास आकर उससे प्रश्न करेंगे। फिर भी शायद उत्तर देने का साहस बाबा ने ही उसे प्रदान किया और उसने कह डाला, आपको मेरी झोपड़ी में आना पड़ेगा। बाबा ने उसके कंधे पर हाथ रखकर प्रेम से उसकी पीठ थपथपाई। अवश्य आऊंगा, ये कहकर बाबा अपने स्थान पर लौट कुर्सी पर बैठ गए। मोची की आंखें सजल हो उठीं। अपने साहस पर वो स्वयं आश्चर्यचकित हुआ, किंतु मेरे यहां बाबा कैसे पधारेंगे, मुझ गरीब की झोपड़ी बाबा को कौन दिखाएगा, ये सब कैसे होगा, उनकी पूजा कब, कहां और किस समय, कहां उनकी प्रतीक्षा करूं। इन विचारों में मग्न मोची वहां खड़ा रह गया। अचानक उसके सामने बिजली सी चमक कर अंधेरा छा गया। बाबा बाहर आए और कार में बैठ चले भी गए। बेचारे उस बूढ़े मोची ने वहां के कई आगंतुक भक्तों से बाबा के अपने घर आने के विषय में पूछा। थोड़े हंस दिए, थोड़े ने डांट दिया और कुछ ने उसे पकड़कर बाहर कर दिया। सबको वो पागल सा नजर आ रहा था। ठीक है, इन श्रीमंतों के बीच मुझे फंसना ही नहीं चाहिए था। यूं निराश हो वो अपने चमड़े के टुकड़ों की थैली से टेक लगाकर बैठ गया। कई दिन बीत गए, उस कोठी में फिर बाबा आए ही नहीं। उनके दर्शन भाग्य की रेखा अपने हाथ में नहीं है, ऐसा निश्चित रूप से समझकर मोची निराश हो शांत हो गया। तब एक दिन भरी दोपहर में लगभग 2 बजे एक बड़ी कार भोंपू बजाती उसके सामने आ खड़ी हुई। मोची थर थर कांपने लगा। पुलिस के आईजी साहब उसे पकड़ने स्वयं आए होंगे। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर ही मुझ पर केस जारी करने आए होंगे। ये सोच वो घबराया, किंतु कार में देखा तो बाबा थे। हंसते हंसते उसकी पीठ थपथपाकर कहा, आओ गाड़ी में चढ़ जाओ, घर चलें। उस मोची को अपनी ओर खींच उसकी पोटली के साथ ही बाबा ने उसे कार में बैठा लिया। उस वृद्ध मोची ने मुंह खोलने की चेष्टा की, किंतु उसके मुख से शब्द ही न निकले। पता नहीं कैसे बाबा की सूचना से ही कार मुख्य सड़क से एक गली में घूमती हुई सामने दिखती मिट्टी के तेल के डिब्बों से तैयार की गई उस मोची की झोपड़ी के सामने रुक गई। उतरकर कीचड़ से बचने के लिए बिछाई ईंटों पर से ही बाबा शीघ्र गति से आगे बढ़ गए। मोची ने दौड़कर अपने घर में प्रवेश किया। नहीं नहीं, तुम कुछ मत मंगवाओ बेचारा, ये कहते हुए बाबा ने अपने हाथ से फलों का सृजन किया। वह फल उसके हाथों में दे दिए। विभूति का सृजन कर उसे तथा उसके बाल बच्चों के मस्तक पर लगाकर आशीर्वाद दिया। ये सपना तो नहीं है, मोची सोचता ही था कि बाबा कार के पास पहुंच गए। मोची उनके समीप पहुंचा। बाबा ने दया से उसके सिर पर हाथ रखकर अभय दान दिया और चले गए। उसकी टीन से बनी झोपड़ी मंदिर के रूप में परिवर्तित हो गई। कई महीनों तक उसके परिचित पूछते रहे कि बाबा कहां खड़े थे, वे कहां बैठे थे, प्रसाद कैसे उत्पन्न किया, तुम्हारा पुण्य ही पुण्य है, कहते हुए उसके घर के सामने दंडवत प्रणाम करके चले जाते। जय साईं राम।
धन्य है भगवान जिन्होंने एक साधारण से हमारे बंधु मोची के प्रति भी अपना अगाध प्रेम प्रदर्शित कर सारी मानवता को ये संदेश दिया कि सभी मानव आपस में बंधु हैं और ईश्वर ही उनके पिता हैं। ये संदेश हृदय में प्रसन्नता भरने का, कोई भी अवसर हाथ से न जाने देने का मार्ग दिखाता है।
साईं प्रेम वाणी की गान सरिता में अब प्रस्तुत है एक ऊर्जा से भरी हुई कव्वाली। कौन कहता है कयामत का ये अंधेरा है, वो आ गए हैं सूरत सा जिनका चेहरा है। स्वामी के लिए इन शब्दों और भावों को इस कव्वाली में पिरोया गया है और भगवान के द्वारा मानवता के उद्धार के लिए दिए गए उपहारों को कव्वाली के तीन अंतरों में प्रस्तुत किया गया है। भगवान के करुणा भरे उपहारों का वर्णन करने वाले इस कव्वाली के बोल हैं, हाथ बढ़ाया है मेरे साईं ने।
छेड़ा है मेरे साईं। मुझे दीमक जलाए है मेरे साईं ने, साथ निभाया है मेरे साईं ने,
हाथ बढ़ाया है मेरे साईं ने।
शुद्ध प्रेम के अवतार भगवान श्री सत्य साई बाबा ने वास्तव में अपने पहले अवतार में शिरडी में और दूसरे अवतार में पुट्टपर्ती में मानव को दैविक पथ पर लाने के लिए अपना हाथ बढ़ाया है और अपने जीवन के माध्यम से अपने संदेश को हम सब तक पहुंचाया है। इस सुफियाना रंग की कव्वाली को श्री सत्य साई बुक्स एवं पब्लिकेशन ट्रस्ट मध्य प्रदेश द्वारा प्रकाशित किया गया है साई संस्कार गीत माला भाग एक में। जनवरी 2018 में प्रशांति निलयम में बाल विकास के पूर्व छात्रों के सम्मेलन में इस कव्वाली को साई कुलवंत हॉल में मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ के छात्रों ने भाव सहित प्रस्तुत किया था।
अब प्रस्तुत है हमारा कार्यक्रम अवतार वाणी। भगवान बाबा द्वारा 12 मई सन 1982 को
मुंबई स्थित निवास आश्रम धर्म क्षेत्र की स्थापना दिवस की एक वर्षगांठ के अवसर पर दिए गए दिव्य संभाषण का अगला भाग आज हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं।
మానవత్వాన్ని సార్థకం గావించుకునేటువంటి యొక్క దివ్యత్వమైనటువంటి యొక్క దైవ భక్తిని ఈనాడు మనం అభివృద్ధి గావించుకోవాలి.
మానవతకి అందరికీ దివ్యతకు పహచాన కర్ ఉంకో పవిత్ర బనానే
దైవ భక్తి దినదినమునకు క్షీణించిపోవటం చేతనే జగత్తు ఇన్ని విధమైనటువంటి అశాంతితో కుమిలిపోతుంటుండాలి.
భక్తి భావనకే కమ్ హోనేకే కారణ హీ దునియా మే ఇత్నా కోలాహల్ ఫైలా హువా.
మానవునికి మానవునికి మధ్యనున్న సంబంధ బాంధవ్యాన్ని మనం పూర్తి త్యజించిపోతున్నాము.
మానవ మానవకే బీచ్ మే జో సంబంధ హోనా చాహియే వో ఛోడ్ రహే హై.
ఈ విధమైనటువంటి యొక్క సంబంధాన్ని మనం త్యజించుకోకూడదు.
ఇస్ సంబంధ కో హమే ఛోడ్నా నహీ చాహియే.
అందరూ ఏకత్వమైనటువంటి యొక్క ఆనందముతో సోదర భావం చే మన యొక్క దివ్యత్వం అనేటువంటి దాన్ని పెంచుకోవాలి.
సబ్ మిల్ జుల్ కర్ బిరాదరీ భావనా సే ఆగే బడ్నా చాహియే.
కనుక ఏది చెప్పినా ఏది చూచినా ఏది పాడినా హృదయం నుంచి రావాలి.
జో భీ దేఖే జో భీ కరే జో భీ గాయే హృదయ సే నికల్నా చాహియే.
కనుక పరులను మెప్పించుకోవటం మనం పాటు పడనక్కర్లేదు, పరమాత్మని మెప్పించడానికి ప్రయత్నించండి.
దూసరం కి ప్రశంస కర్నే కే లియే హమే కుచ్ శ్రవణం చాహియే.
కీర్తనం విష్ణుస్తరణం పాదసేవనం వందనం అర్చనం దాస్యం స్నేహం అత్త నివేదనం ఈ మార్గములన్నీ కూడా భగవంతుని ప్రసన్నులు గావించుకునే నిమిత్తం చేస్తున్నాం.
భగవాన్ కో ప్రసన్న బనానే కే లియే హీ నవ్ ప్రకార్ కే భక్తియోం కో హమ్ అప్నాతే హై శ్రవణ్ కీర్తన్ స్మరణ.
ఇంటిలో వండినటువంటి వంటలంతా కూడా దేనికోసం వండావు? మనం భుజించుకునే కోసం వండాం.
ఘర్ మే హమ్ ఖానా బనాతే హై క్యో బనాతే హై ఖానే కే లియే.
అదే విధంగానే మనం చేసేటువంటి యొక్క సాధనలన్నీ కూడా దేనికోసం చేస్తున్నాం? మనం అనుభవించే కోసం చేస్తాయి.
హమ్ జో భీ సాధన కర్తే హై క్యో కర్తే హై అనుభవ కే లియే.
కానీ వండే వంటలు మాత్రం భుజిస్తున్నాము, చేసే సాధనలు బయటకు పంపిస్తున్నాము.
లేకన్ జో ఖానా బనాతే హై ఖాతే హై జో సాధనా హై వో బాహర్ ఛోడ్ రహే హై.
కానీ ఇది సరైనది కాదు.
ఏ సహీ నహీ.
నిజమైనటువంటి ఫుడ్ మనకు అదే భగవంతుని యొక్క ఇది.
సచ్చ ఆహార హై ఖురాక్ హై వహీ హై.
కనుకనే ఇది ఫుడ్ ఇది హెడ్ పైన గాడ్.
ఏ ఆహార హై ఔర్ ఉస్కే బాద్ దిమాగ్ హై.
తిన్నటువంటి ఆహారాన్ని తలలో విచారణ శక్తిగా రూపొందింపుకోవాలి. విచారణ చేసినటువంటి దాన్ని దైవంతో ఐక్యం గావించుకోవాలి.
జో భీ ఖానా ఖాతే హై ఉస్సే విచార్ బన్నా చాహియే ఔర్ విచార్ సే భగవాన్ కీ భావన పైదా హోనీ చాహియే.
కానీ మనము ఫుడ్ హెడ్ వరకే మనం పోతున్నాం, ఘాట్ వరకు పోవటం లేదు.
లేకన్ హమారే దృష్టి కేవల్ ఆహార్ ఔర్ విచార్ తకీ హై.
కనుక ఏమైపోతుంది? ఫుడ్ హెడ్ రెండు బ్యాడ్ అయిపోతుండీ.
ఇసీలియే ఆహార్ ఔర్ విచార్ భీ ఖరాబ్ హో రహా హై.
ఇది కాదు మన యొక్క మానవత్వం. మనము మూడింటిని ఏకం, త్రిగుణం త్రిదలాకారం త్రినేత్రంచ త్రియాయుధం త్రిజన్మ పాప సంహారం ఏక బిల్వం శివార్పణం.
లేకన్ ఏ మానవతాకి సహీ పరిభాష నహీ హై. तो शंकर के बारे में, शिव के बारे में जो वर्णन है उसमें तीन की प्रधानता है, इन तीनों को साथ लेके जाना है।
कल को मनम चेसे सर्व कर्मल कूडनु सर्व भावमल कूडनु सर्व విధములైనటువంటి యొక్క సాధనను కూడాను దైవార్పితమైనటువంటి భావంతో మనం చేయడానికి ప్రయత్నించాలి. ఇదే ఈనాడు సర్వ సమస్యలకు కూడాను సరైనటువంటి ఔషధము.
जो भी साधना हम करें, जो भी काम करें, भगवान की भावना से उनको अर्पित करके करना चाहिए. यही आजकल की समस्याओं का सच्चा समाधान.
मानवत्वाने मनम सार्थकं चेसुकोवाली प्रेम स्वरूपुलारा.
मानवता को हमें सार्थक करना चाहिए, आ प्रेम के स्वरूप है.
ఏది చేసినప్పటికీ సర్వదేవుని యందుకును భగవంతుడు పంచస్వరూపం పంచభూత స్వరూపులై ఉన్నాడు.
जो भी आप करते हैं उसमें भगवान बैठे हुए हैं.
अनेक పర్యాయములు చెప్పాను. పంచభూతములు పృథ్వీ, ఈ పృథ్వీ అనేటువంటి భూతములో భగవంతుడు ఏ రూపంలో ఉన్నాడు?
कई बार मैं कह चुका हूँ, पृथ्वी है पहला पंचतत्व, इसमें कैसे भगवान?
ఈ పృథ్వీ అనేటువంటి భూతములో భగవంతుడు చైతన్య స్వరూపుడుగా ఉంటున్నాడు.
पृथ्वी में भगवान चैतन्य के रूप में विराजमान है.
రెండో భూతమైనటువంటి జలములో భగవంతుడు ఏ స్వరూపంలో ఉన్నాడు? ప్రజ్ఞాన స్వరూపంలో ఉంటున్నాడు.
पानी में प्रज्ञान के रूप में भगवान बैठे हुए हैं.
మూడవది అగ్ని అయినటువంటి యొక్క దీంట్లో భూతములో భగవంతుడు కేవలం హెచ్చరిక స్వరూపంలో ఉంటున్నాడు.
ఆగ్ మే సతర్కత కే రూప్ మే భగవాన్ బైఠే హుయే హై.
గాలిలో భగవంతుడు ప్రాణస్వరూపుడై ఉంటున్నాడు.
హవా మే ప్రాణ్ కే రూప్ మే పరమాత్మ బైఠే హుయే హై.
ఇంకా శబ్దములో ఆకాశములో భగవంతుడు ఓంకార స్వరూపుడై ఉంటున్నాడు.
ఆకాశ మే ప్రణవనాథ్ ఓంకార్ కే రూప్ మే పరమాత్మ.
కనుకనే పంచభూతములు ఎందుకును పరమాత్మ అంశములు పంచాంశములుగా ఉంటున్నాయి.
ఇసులే పాంచ తత్వం మే పరమాత్మ కే పాంచ తత్వ.
ఈనాడు ఏ భూతాన్ని మనము వృథా చేసినప్పటికీ భగవంతుని అలక్ష్యం చేసినటువంటి వారమైపోతాం.
ఇస్మే హమ్ చాహే కిసీ భీ తత్వ కే అవహేళన కరే భగవాన్ కే అవహేళన బన్ జాతీ హై.
భగవంతుడు ఆ స్వరూపంలో ఉంటున్నప్పుడు అట్టి భగవంతుని మనము ఆరాధన చేసి సాత్వికమైన మార్గంలో మనం కర్మలు ఎందు వినియోగం పెట్టాలి.
చూంకి భగవాన్ ఉస్ రూప్ మే విద్యమాన్ హై ఉన్కో ఇసీ రూప్ మే ఆరాధన కర్నీ చాహియే.
దీనిని ఆధారం చేసుకుని భగవద్గీత ఎందు కర్మణ్యేవ అధికారస్య, కర్మను ఆచరించడానికి మాత్రమే నీకు అధికారం ఉండాలి, ఫలితం నీది కాదు.
इसी को आधार बना करके गीता में कहा गया है कि कर्मण्येव अधिकारस्ते, तुम्हारा अधिकार केवल काम करने में है.
नी प्राप्तानुसारम अनुग्रहिंचेटुवंटि वाडु वेरे उंटुन्नाडु.
तुम्हारे काम को फल के अनुसार
नीव केवलम अंदुकोवाल्सिनटुवंटि वाडे कानी अनुग्रहिंचडानिकि प्रयत्नं चेसेटुवंटि वाडु कादु.
फल लेना ही तुम्हारा काम है, देना नहीं है.
కనుక ఇచ్చేటువంటి వాడు ఒకరు, పుచ్చుకునేటువంటి వాడు మరొకడు.
దేనే వాలా ఏక్ హై, లేనే వాలా దూసరా.
కనుకని ఇచ్చేటువంటి వాడే సత్,
దేనే వాలా హి సత్ హై.
పుచ్చుకునేటువంటి వాడే త్వం,
జో లేతా హై వహీ త్వం హై.
అనుగ్రహమే అసి,
అనుగ్రహ కి భావన హై.
కనుకని సత్ త్వం అసి, దీనిని పొందాలి మనం, అందుకోవాలి.
ఇసేకో కహా గయా హై తత్వం అసి,
దీనిని అర్థం చేసుకోవాలి. తత్ అనేటువంటిది కేవలం అనుగ్రహించేటువంటి వాడు.
ఇసేకో సమజనా చాహియే కి తత్ కేవల్ అనుగ్రహ కి.
దీనిని ఉపనిషత్తులో దానికి తగినటువంటి అర్థం ఏమిచ్చా? ఉప సమీపి, ఉప సమీపము.
ఉపనిషత్ కా అర్థ బతాయ గయా హై, ఉప కా మత్లబ్ నజ్దీక్,
నీ క్రింద,
నీ కా మత్లబ్ నీచే,
షట్ బైఠో,
సత్ కా మత్లబ్ బైఠనా.
ఈ క్రింద నీవు కూర్చోవని చెప్పింది ఉపనిషత్తు.
నీచే బైట్ జావో ఏ కహా గయా హై ఉపనిషత్.
నీచే అనగా క్రింద కాదు, నీవు కేవలము ఒక శిష్య స్థానమును నీవు అలంకరించబడింది.
నీచే కా మత్లబ్ జమీన్ పర్ నహీ హై, శిష్య కే రూప్ మే బైఠనా హై.
నీవు అనుగ్రహించే తత్ అనేటువంటిది మాత్రము అనుగ్రహించే స్థానంలో, గురు స్థానంలో ఉంటుండాలి.
తత్ జో అనుగ్రహకర్త హై వో గురు కే స్థాన్ మే హై.
కనుక అనుగ్రహించేటువంటి గురుస్థానము ఉన్నత స్థాయిలో ఉంటుండాలి, పుచ్చుకునేటువంటి యొక్క శిష్య స్థానము కింద స్థాయిలో ఉంటుండాలి.
అనుగ్రహ కర్నే వాలా గురు ఊపర్ హోనా చాహియే ఔర్ అనుగ్రహ.
క్రమక్రమేణా ఈ అనుగ్రహం పొందిన తర్వాత రెండు కూడా ఏకవంతం అవుతుంది.
ధీరే ధీరే జబ్ అనుగ్రహ కే భావన పరిణత్ హో జాతీ హై, దోనో ఏక్ హో జాతే హై.
కనుకనే అప్పుడు ప్రజ్ఞానం బ్రహ్మ అయిపోతుంది.
తభీ కహా జాతా హై ప్రజ్ఞానం.
ఈ ప్రజ్ఞానం అనేటువంటి రెండింటి ఎందు వికసించినప్పుడు అయమాత్మ బ్రహ్మ, ఇదే అయమాత్మ బ్రహ్మ అని.
ఏ ప్రజ్ఞాన్ పరిణత్ హో జాతా హై తదు అయమాత్మ బ్రహ్మ కీ స్థితి ఆ జాతీ హై. అయం ఆత్మ, యహీ ఆత్మ హై.
ఆ విధమైనటువంటి యొక్క విచారణను మనం ప్రతి ఒక్క మానవుడు కూడాను చక్కగా లోతుగా దిగి చూడాలి.
ఇస్ ప్రకార్ కే చింతన్ కి గహరాయి మే హరేక్ ఆత్మీ.
ఏదో వేదములో మహావాక్యాలు చెప్పినాయి కదా అని మహావాక్యముల అర్థములు మనం ఉచ్చరిస్తూ పోతే ప్రయోజనం లేదు, మహావాక్యముల అర్థములు ఆచరించుతూ రావాలి.
వేదం మే బహుత్ సే మహావాక్య హై లేకిన్ ఉన్కో సమజ్నే పఢ్నే సే కోయి కుచ్ నహీ హోతా హై.
ప్రేమ స్వరూపులారా, మనం అన్ని ఆచరించడానికి వీలు లేకపోయినా ఒక్కటి రెండైనా మనం ఆచరించి ధన్యులు కావాలి.
హో సక్తా హర్ చీజ్ కో హమ్ అప్నా నహీ సకే లేకిన్ కమ్ సే కమ్ ఏక్ దో చీజ్ హమ్కో హమ్ అప్నా సక్తే హై.
నిజముగా భగవంతుని నమ్ముకున్నటువంటి వారికి ఎట్టి కొరతలు కూడా ఉంటుండవు.
జో భగవాన్ పర్ విశ్వాస్ రఖతే హై ఉన్కో కిసీ ప్రకార్ కీ కమీ నహీ.
ఎప్పుడు భగవంతునికి సమీపంలో ఉంటారో వారికి ఎట్టి భ్రాంతులు ఉండకూడదు.
జో భగవాన్ కే నికట్ హై ఉన్మే కిసీ ప్రకార్ కా భ్రమ్ నహీ హోనా చాహియే.
ధృతరాష్ట్రుడు అడిగాడు, అర్జునుడు అనేక విధములుగా యుద్దములో బోధిస్తూ వచ్చినప్పటికీ తాను విచారగ్రస్తుడైపోతూ వచ్చినాడు. సంజయ, నా కుమారుడైనటువంటి యొక్క కౌరవులు యుద్దములో ఎట్ట ఉన్నారు? ఎవరికి జయాపజయములు కలుగుతుంది? నీకేమైనా తెలిసిందా అన్నాడు.
ధృతరాష్ట్ర హమేషా అప్నే బచ్చోం కే బారే మే పరిషాన్ హోతా థా. ఉన్హోనే సంజయ్ సే పూచా కి హమారే బచ్చే హై కౌరవ హై కైసే యుద్ధ కర్ రహే హై క్యా హో రహా హై.
ఎవరికి విజయం ప్రాప్తిస్తుంది అన్నాడు.
విజయ్ కిస్కో మిలేగి యే పూచా హై.
అప్పుడు ఒకే జవాబు చెప్పాడు సంజయుడు.
సంజయ్ నే ఏకే జవాబు దియా హై.
యత్ర యోగీశ్వర కృష్ణ ఎత్ర పార్థో ధనుద్రహ తత్ర శ్రీ విజయ విభూతి ధ్రువానీతి మతిర్మమ అన్నాడు. ఎక్కడ యోగేశ్వరుడైనటువంటి కృష్ణుడున్నాడో అతనికి సంపూర్ణ విశ్వాసుడైనటువంటి విశ్వాసంతో ఆరాధించేటువంటి ధనుంజయుడు ఎక్కడ ఉంటాడో అక్కడే విజయము, అక్కడే సర్వ విధమైనటువంటి యొక్క జ్ఞానము లభిస్తుంది అన్నాడు.
ఉన్నోనే కహా కి జహా యోగేశ్వర్ కృష్ణ బైఠే హుయే హై ఔర్ ఉన్కా అనుసరణ కర్నే వాలా అర్జున్ భీ హై వహీ పర్ శ్రీ హోగి వహీ పర్ విజయ హోగి వహీ పర్ విభూతి హోగి.
కేవలం కృష్ణుని ప్రక్కలో ఉండినంత మాత్రమే ప్రయోజనం లేదు, దృఢమైనటువంటి విశ్వాసం అనేటువంటి గాంధీవాన్ని ధరించి ఉంటున్నాడు.
కేవల్ కృష్ణ కే సాథ్ ఖడే హోనే సే కోయి ఫైదా నహీ హై ఉన్కే పాస్ గాండీవ్ హై జో దృఢతా.
విశ్వాసమే లేకపోతే ఉండి ప్రయోజనం ఏమిటి?
విశ్వాస్ నహీ హై తో సాథ్ రహనే సే కుచ్ ఫైదా నహీ హోతా హై.
కమలం పైన కప్పలు ఉంటున్నాయి,
కమల్ కే ఊపర్ కై మెంఢక్ హోతే హై,
పైనే ఉంటున్నాయి కానీ ప్రయోజనం ఏమిటి?
ఉస్కే ఊపర్ హీ హై లేకిన్ ఫైదా క్యా?
ఆ కమలములు ఎందున్నటువంటి మకరందాన్ని అది త్రాగటం లేదు.
కమల్ కే అందర్ జో మకరంద హై ఉస్కో పీ నహీ సక్తే.
దూరం నుంచి వచ్చి తుమ్మెదలు వచ్చి ఆ మకరందాన్ని త్రాగిపోతున్నాయి.
కహీ దూర్ సే ఆకర్ భవరా ఆతా హై ఉస్ మత్ కో పీ లేతా హై.
కనుకని భగవంతునికి దగ్గర ఉంటుందంత మాత్రం కాదు, దృఢ విశ్వాసం అనేటువంటి గాంధీవాన్ని ధరించి ఉంటుండాలి.
ఇసులే భగవాన్ కో నజదీక్ రహనే సే కోయి ఫైదా నహీ హై.
గాంధీవం అనగా బలమైన విశ్వాసము అంతేకాని ఒక ఏరో కాదు.
గాంధీవ్ కా మత్లబ్ దృఢ విశ్వాస్ కా ప్రతీక్ హై.
ఇది ఎత్ర యోగీశ్వర కృష్ణ ఎత్ర పార్థో ధనుద్ధర, పార్థ అనగా పృథ్వీపుత్రుడు అనగా అంతేకాని అర్జునుడు కాదు.
పార్థ కా మత్లబ్ కేవల్ అర్జున్ నహీ హై, పృథ్వీ కే పుత్ర కో పార్థ కహా జాతా హై.
కనుక మీరందరూ కూడాను పార్థులే.
ఆప్ సభీ లోగ్ పార్థ హై.
అందరి ఎందు కూడాను ఒక దృఢ విశ్వాసం అనేటువంటి యొక్క గాంధీవాన్ని మీరు అభివృద్ధి చేసుకోవాలి.
సబ్కే అందర్ గాంధీవ్ కా దృఢ విశ్వాస్ హోనా చాహియే.
అక్కడ మనకు విజయం సంప్రాప్తమవుతుంది.
జబ్ యే హో తో విజయ్ అవశ్యం భావీ హై.
అభి ఆప్ సున్ రహే థే అవతార్ వాణీ. आज हमने धर्म क्षेत्र की स्थापना दिवस की वर्षगांठ के अवसर पर दिए गए दिव्य संभाषण का एक भाग प्रस्तुत किया था.
आप सुन रहे हैं रेडियो साईं प्रशांति निलयम से हिंदी प्रसारण साईं प्रेम वाणी.
अब प्रस्तुत है आदर्श जीवन आनंद उपवन.
आज इसके अंतर्गत हम श्री चैतन्य महाप्रभु जी के जीवन पर आधारित एक नृत्य नाटिका का एक भाग प्रस्तुत करने जा रहे हैं.
श्री भगवान की अलौकिक उपस्थिति में इसका मंचन प्रशांति निलयम में मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ के बाल विकास के बच्चों द्वारा 9 सितंबर सन 2017 को किया गया था.
वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ నిర్విఘ్నం కురు మే దేవ సర్వకార్యేషు సర్వదా.
ఓం శ్రీ సాయిరాం. భగవాన్ బాబా కి అసీమ్ కృపా సే ఆజ్ హమ్ मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बाल विकास के बच्चे श्री चैतन्य महाप्रभु के जीवन की कुछ लीलाओं पर आधारित एक नृत्य नाटिका प्रस्तुत करने जा रहे हैं। ऐसा कौन होगा जिसे हरे राम हरे कृष्ण संप्रदाय और इस्कॉन मंदिर के बारे में जानकारी न हो। नाम संकीर्तन आंदोलन के प्रणेता पश्चिम बंगाल के श्री चैतन्य महाप्रभु थे, जिनके नाम संकीर्तन के स्वर आज भी गूंजते हैं। चैतन्य महाप्रभु का मूल नाम निमाई था। बचपन से ही निमाई ने अपनी दिव्य लीलाओं को प्रारंभ कर दिया था। महाप्रभु के इस दिव्य अवतार का रहस्य ये था कि इस अवतार में भगवान स्वयं महाप्रभु के रूप में राधा जी का हृदय और कृष्ण जी का शरीर लेकर प्रकट हुए थे। उन्होंने नाम संकीर्तन को एक आंदोलन का रूप दे दिया और जनमानस को नाम संकीर्तन आंदोलन द्वारा भगवान की ओर आकर्षित किया। हमारे प्रिय भगवान श्री सत्य साईं बाबा ने भी हमें सामूहिक भजन और नगर संकीर्तन के माध्यम से भगवान के नाम स्मरण और गायन के आध्यात्मिक आंदोलन से जोड़ दिया है। महाप्रभु का अवतरण फाल्गुन मास की पूर्णिमा को उस घड़ी में हुआ जब चंद्र ग्रहण का मोक्ष हो रहा था और प्रत्येक नवदीपवासी भगवान नाम का स्मरण करते हुए गंगा में स्नान कर रहा था।
हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे।
महाप्रभु ने बचपन में अनेक लीलाएं की हैं। आइए उनमें से एक लीला की झलक देखते हैं।
सची, ये ब्राह्मण बहुत ही धार्मिक एवं वैष्णव है। ये हमारे चाचा को जानते हैं। ये तीर्थ पे गए थे, हमारे घर एक दो दिन रुकना चाहते हैं। इनकी ठीक से देखभाल करना।
हाँ हाँ, ये भी कोई बताने वाली बात है? हमारा अहोभाग्य है, एक वैष्णव ब्राह्मण हमारे घर पधारे हैं। पंडित जी, आप अपना सामान यहीं रखकर पहले स्नान कर लीजिए।
सची, ब्राह्मण के लिए भोजन बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, मात्र उन्हें कच्चे पदार्थ दे देना, वे स्वयं ही बना लेते हैं।
कृष्णार्पणमस्तु।
अरे राम राम राम, यह तुम क्या कर रहे हो? यह भोग भगवान कृष्ण के लिए बनाया गया था और तुमने उसे झूठा कर दिया। अब मुझे फिर से तैयार करना पड़ेगा। कृष्णार्पणमस्तु। अरे उद्दंड बालक, ये ये बार बार तुम क्या कर रहे हो? तुमने फिर से भोग को जूठा कर दिया। हे भगवान, मुझे फिर से बनाना पड़ेगा।
वैष्णव, क्या हुआ?
महोदय, आपका बेटा बड़ा शरारती है, इसने दोबारा भोग को जूठा कर दिया। अब फिर से मुझे भगवान के लिए भोग बनाना पड़ेगा। मैं जब तक भगवान को भोग नहीं लगा लेता, एक अन्न का दाना भी ग्रहण नहीं करता हूँ। ओहो, बड़े जोरों की भूख भी लगी है।
वैष्णव, इस नादान बालक को क्षमा कर दीजिए। अब मैं इसे अपने कमरे में बंद कर दूंगा, ताकि ये पुनः आपके कार्यों में बाधा न डाल सके।
कृष्णार्पणमस्तु।
विप्रवर, क्यों विचलित होते हो? मैं ही तो तुम्हारा कृष्ण और विष्णु हूँ।
ये मैं क्या देख रहा हूँ प्रभु? मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं आपको पहचान न सका। हे प्रभु, मैं कितना भाग्यवान हूँ जो मुझे आपके दर्शन हुए। मेरा जीवन धन्य हो गया।
अभी आप सुन रहे थे हमारा प्रोग्राम आदर्श जीवन आनंद उपवन।
आज इसके अंतर्गत प्रस्तुत नाटिका में आपने श्री चैतन्य महाप्रभु जी के जीवन का वो प्रसंग सुना,
जिसमें वे अपनी बाल्यावस्था में अपने स्वयं भगवान श्री कृष्ण के अवतार होने का प्रकटन करते हैं।
अब प्रस्तुत है हमारा लोकप्रिय कार्यक्रम साई का प्यार जीवन आधार।
आज इसके अंतर्गत हम हरियाणा राज्य संगठन के अंबाला समिति की साई भजन गायिका एवं संगीत शिक्षिका श्रीमती सरिता शर्मा जी के साथ हुई हमारी भेंट वार्ता का पहला भाग प्रस्तुत करने जा रहे हैं।
रेडियो साई से प्रसारित हिंदी कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को प्रशांति निलयम से हमारा साई राम। आज हम अंबाला से आई हुई एक संगीत शिक्षिका श्रीमती सरिता शर्मा से आपकी भेंट करवाने जा रहे हैं। सरिता जी केवल शास्त्रीय संगीत ही नहीं, माता की भेंटें भी बहुत भाव से गाती हैं और बाबा के भजन तो गाती ही नहीं, सिखाती भी हैं। साईराम सरिता जी।
साईराम जी।
रेडियो साई के स्टूडियो में आपका स्वागत है।
धन्यवाद।
आप आज हमारे श्रोताओं को ये बताइए, सुदूर दक्षिण में श्री सत्य साई बाबा की भक्तिन बन के आई हैं, ये सब कैसे संभव हुआ, कब हुआ?
ये बहुत लंबी कहानी है। मैं 92 में मैंने अपना स्कूल ज्वाइन किया था, तो उसके बाद एज यूजुअल चलता रहा। बाबा के बारे में मुझे कुछ भी नहीं मालूम था। 1994 की बात है, हमारा प्रोग्राम इधर साउथ में घूमने का बना, जैसे वेकेशंस होती हैं स्कूलों में, तो हमने प्रोग्राम बनाया, इधर बैंगलोर आएंगे, मैसूर ऊटी वगैरह घूमेंगे।
समर वेकेशन?
समर वेकेशन में, ये मई एंड की बात है और जून हमारा उधर वेकेशंस होती हैं। नॉर्थ में मैं अंबाला से हरियाणा स्टेट से हूँ
जी, जी
बेसिकली। तो हमने भी पूरे परिवार के साथ हमने प्लान किया कि हम इधर बैंगलोर ऊटी मैसूर वगैरह घूमेंगे। तो मेरे क्लीग थे तब,
हाँ जी,
उनको भी इधर ही का ट्रिप बना रहे थे, तो बाय चांस हम टेबल पे बैठे थे, आपस में खाना वाना खा रहे थे, तो एकदम से डिस्कशन हुई, तो वो कहते हम भी सरिता जी उधर ही जा रहे हैं, लेकिन हमारे उसमें थोड़ा सा एक एडिशन है। क्या है? तो उन्होंने बताया हम पुट्टपर्ती जाएंगे। तो मैंने कहा पुट्टपर्ती वो कौन सा स्थान है और कहाँ पर है? तो उन्होंने मुझे शॉर्ट में बताया कि ऐसे ऐसे वहां पर सत्य साईं बाबा आप जानते ही होंगे, जिनके बड़े बड़े बाल हैं, ऐसे ही उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया।
हाँ जी।
तो मैंने कहा हाँ, उनको मैंने उनकी फोटो देखी हुई है, लेकिन मैं उनके बारे में कुछ नहीं जानती। तो लेकिन मैं इतनी भी नास्तिक नहीं हूँ कि मैं कहीं, अगर आप जाना चाहते हैं, अगर आप ये सोचते हैं कि हम इकट्ठा ट्रिप बना लें, तो कोई नहीं, हम आपके साथ चलेंगे। लेकिन वैसे मैं एक बार अपने हस्बैंड से बात करती हूँ
जी।
तो अगर हमारा पूरा परिवार का बनता है तो फिर हम अम्बाला से ही हम लोग इकट्ठा चलेंगे। उन्होंने मुझे बताया कि मेरे मदर इन लॉ ने माना था कि स्वामी मेरी बहू के घर बेटा होगा तो उस बेटे को आपके दर्शन के लिए जरूर लेके आएंगे। तो वो कहती बहुत साल हो गए हैं बेटा हुए तो हम नहीं जा सके। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, हम भी चलेंगे आपके साथ। हम वहां से जो डेट डिसाइडेड थी उसके ऊपर हम ट्रेन में बैठने लगे। तो स्टेशन पर ही हमें वहां अपने जानकार मिल गए जो कि साई सेवा समिति के सदस्य थे
जी।
उन दिनों में एक्चुअली ना ये भी होता है कि सेवा दल आता है यहाँ सेवा के लिए।
हाँ, हर
15 दिन की, हाँ जी,
आया करते हैं।
तो हरियाणा का जो सेवा दल है वो मई एंड में आता है और जून के 15 डेज वो यहाँ पर सेवा कार्य करते थे।
संयोग वर्ष आपके अपने हरियाणा स्टेट के लोग उसी ट्रेन में उसी वक्त आ रहे थे यहाँ सेवा करने।
हाँ जी बिल्कुल,
और सब मिलके आपको लेके आए।
हाँ, तो फिर एकदम अचानक से जब भेंट हुई तो सब इंट्रोडक्शन बढ़ते 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 फिर हम लोग सब इकट्ठे बैठे। तो दो दिन का सफर हमने ट्रेन में ही तय किया। तो मुझे आज की डेट में ये महसूस होता है कि स्वामी ने हमें तब से ही जैसे गाइडलाइंस देते हुए अपने तरफ उन्होंने बुलाया हमें, क्योंकि स्वामी की इच्छा के बिना आज जो मैं महसूस करती हूँ कुछ भी नहीं हो सकता। उस समय तो ये था ना कि हमें पता ही नहीं था स्वामी के बारे में। जब हम वहां से चले तो बिल्कुल ब्लैंक थे, एक जैसे होती है ना साफ स्लेट सी होती है जिसपे कुछ नहीं लिखा होता,
कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं,
बस जा रहे हैं, है ना। तो इस चीज के बारे में कोई अट्रैक्शन नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे सफर हमारा बढ़ता गया इधर पुट्टपर्ती की तरफ, तो रास्ते में वो सेवा दल वाले सारे होते हैं, दो टाइम भजन करना,
भजन होता है दोनों टाइम,
और स्वामी के बातें करना, हम भी उसमें इन्वॉल्व हो गए, बहुत ही आनंद आना शुरू हो गया।
तो आपको यहाँ आते ही दर्शन हुए कि नहीं हुए?
नहीं, एक्चुअली उन दिनों स्वामी व्हाइट फील्ड में होते हैं।
हाँ, मैं वही सोच रही थी।
हाँ।
और आप आगे पुट्टपर्ती?
हम आगे पुट्टपर्ती
फिर,
क्योंकि हमें सेवा दल ने इतना बताया भी नहीं और जो हमें लेके आए थे उनको भी ऐसा इतना नहीं मालूम था। वो भी सो स्वामी की इच्छा थी ना कि पहले हम यहाँ पुट्टपर्ती में आके दर्शन करें, आश्रम में आए
जी,
तो फिर उसके बाद उधर जाएं। तो ये मतलब एक प्रोसेस टर्न वाइज एक के बाद एक बनता गया। तो हम जब यहाँ पहुंचे तो वही उनके साथ हम शेड्स थे तब, जहां अब ये नॉर्थ 1, 2, 3, 4 बने हुए हैं ना
जी,
यहाँ शेड्स हुआ करते थे तब, सेवा दल शेड्स।
अच्छा,
जब हम 94 में आए हैं तब यहाँ ये बिल्डिंग्स नहीं थी।
फिर
हम ऑब्वियसली जब हम सेवा दल के साथ थे तो उन्होंने कहा कि आप हमारे साथ ही रहिए, क्योंकि अब स्वामी नहीं थे तो हमें रात तो यहाँ बितानी थी, क्योंकि क्यूरियोसिटी थी मन में स्वामी से मिलने की, क्योंकि जिस चीज के लिए आए थे। और पूरा रास्ता उनके जब गुणगान सुनते रहे, उनकी लीलाओं को सुनते रहे, तो मन में एक जिज्ञासा सी हो गई थी कि स्वामी के दर्शन करने हैं। तो उसी जिज्ञासा के साथ हम वो शेड्स के बाहर ना, वो अभी भी बने हुए हैं, वी कैन से दैट बेंचेस टाइप, हम वहां, मैं और मेरे हस्बैंड, हम दोनों वहां बैठे तो देख रहे कि बाबा ने कितना बड़ा, ये क्या ऐसे बहुत अच्छा आश्रम बना हुआ है, बहुत नीट है, ये सब आपस में बातें करते, हम सारी रात से बातें करते रहे स्वामी की। अभी की कुछ नहीं मालूम था हमें स्वामी के बारे में, फिर भी उन्हीं लीलाओं के ऊपर जरा अपने आप को रिव्यू करते हुए हम रात भर वहीं बैठे रहे, क्योंकि एक तो आदत नहीं थी ऐसे अंदर नीचे जमीन पे सोने की।
हाँ।
और बाहर थोड़ा मौसम भी अच्छा था, उन दिनों गर्मी बहुत होती है ना
जी,
मई एंड में। तो बस रात ऐसी बातों में कटी, कब नींद आ गई।
फिर बैंगलोर जाने का मन हुआ?
हाँ,
कि नहीं हुआ,
वो तो रात को ही डिसाइडेड था ना कि हमने सुबह जो भी पहली बस जाएगी बैंगलोर, हमने व्हाइट फील्ड ही जाना, स्वामी के दर्शन करने हैं तो वो जहाँ है हम वहाँ जाएंगे,
वहाँ जाएंगे,
ये इच्छा तो थी मन में ना। तो लेकिन जब एक पर्पस भी था हमारा कि स्वामी के दर्शन करने हैं तो जाना है, तो फिर हमने मॉर्निंग बस का पता किया और उस बस पे हम बैंगलोर पहुंचे, फिर वहां से व्हाइट फील्ड गए। वहां जब पहुंचे तो स्वामी दर्शन देके जा चुके थे, तो हमने आश्रम के बाहर ही एक हमें मिल गई डॉर्मेट्री टाइप मिल गई, वहां पर 7-8 लोग हम थे और उसमें और भी कुछ थे लोग। चलो रहने की व्यवस्था होने पे हमने वहां रात को विश्राम किया। सुबह फिर हमें वहीं पर उन्होंने बताया कि सुबह प्रभात फेरी होती है, अगर आप उठ सकते हैं जा सकते हैं तो प्रभात फेरी भी अटेंड कीजिए।
नगर संकीर्तन,
नगर संकीर्तन जिसको, हाँ जी, जी हम उसको प्रभात फेरी कहते हैं। हाँ, मन में था कि जरूर अटेंड करेंगे, जब आए हैं तो जरूर अटेंड करेंगे। तो हम सुबह उठे लेकिन हम थोड़ा सा लेट हो गए। हम जैसे ही वहां पहुंचे तो वो जो नगर संकीर्तन है वो शुरू होके काफी दूर तक पहुंच गया था, लेकिन फिर भी हमने उसको फॉलो किया। और जैसे जैसे लाइन, सबसे फर्स्ट टाइम तो हमने यही देखा कि कितना डिसिप्लिन है, जेंट्स का एक तरफ और लेडीज का एक तरफ, बहुत डिसिप्लिन वे में एक भजन खत्म हो रहा है, दूसरा शुरू हो रहा है। मतलब इतनी व्यवस्था और इतना अनुशासित होना भी एक मन को अट्रैक्ट करता है। तो वहीं से
आपके लिए नई बात थी ये?
बिल्कुल नई थी बात। हम लोग चाहे भजन से जुड़े हुए थे, मंदिर से जुड़े हुए थे, लेकिन वहां पर इतना डिसिप्लिन नहीं होता था
जी
जितना हमने यहाँ देखा। तो उसको देखते ही मन में बहुत अच्छा लगा कि स्वामी ने कितने अच्छे ढंग से व्यवस्थित रूप से सब चीजें चल रही हैं।
हाँ जी।
उसके बाद फिर नगर संकीर्तन से हम फ्री हो गए तो नेचुरली बाहर ब्रेकफास्ट किया ये वो। तो उसके बाद हमें पता लगता है कि यहाँ टोकन सिस्टम है, आपको लाइन में बैठना पड़ेगा, जिस लाइन में आपका टोकन आएगा उसके अकॉर्डिंगली आप
अंदर जाके बैठेंगे।
तो हम लोग उसी तरह से लाइनों में जाके बैठ गए। चांस की बात है कि जो मेरी लाइन का था टोकन नंबर 3 निकला। तो 3 निकलने से ये है कि जिस ब्लॉक में हम बैठे उसमें बहुत क्लोज था, जहां से बाबा निकलते थे काफी क्लोज वो लाइन हो गई थी। तो बैठे हैं स्वामी की, इंतजार कर रहे हैं और मन में जिज्ञासा भी है, इधर उधर देख रहे हैं क्योंकि आश्रम को देखना भी एक फर्स्ट टाइम था, देखने लगे और क्यूरियोसिटी से वहां बैठे।
फिर जब बाबा आए तो कैसा लगा?
उस समय तो मतलब ये नहीं था कि भगवान आ रहे हैं, क्योंकि मैं इस चीज को अभी नहीं मानती थी, मेरे मन में ये चीज ही नहीं थी। लेकिन ये था कि इनके दर्शन करने आए हैं तो बहुत अच्छा लगा कि वो आ गए हैं, हमारी इंतजार खत्म हुई है। बेसिकली जो खुशी का ये था कि हमारी इंतजार खत्म हुई है तो हम दर्शन करके अब आगे जहां हमने ट्रिप के लिए जाना है वहां जाएंगे
जी।
इससे ज्यादा और कुछ नहीं था, बस इसी तरह। फिर स्वामी तब लाइनों में आते थे ना सब।
हाँ,
जहां बीच में पाथ बना हुआ है वहां वहां आते थे। हार्डली 2-4 मिनट के बाद ही की बात होगी या 5 मिनट्स लगे होंगे स्वामी को, जिस ब्लॉक में हम बैठे थे ना, हम लेडीज का ब्लॉक था।
हाँ जी।
उधर से स्वामी आए तो मैं वहां देख रही थी कि सब जिधर को स्वामी जाते हैं उधर ही अपना मुंह मोड़ के बैठ जाते हैं। मैंने भी वैसे ही करना शुरू कर दिया कि ये कुछ ट्रेंड होगा, या फिर मेरे को बाद में एहसास हुआ ये तो स्वामी के दर्शन के लिए सब दाएं बाएं मुड़ते हैं। तो इतने में स्वामी सामने आके खड़े हो गए, उसी ब्लॉक के सामने जिसमें मैं तीसरी लाइन में बैठी थी।
और आपको बहुत करीब से बहुत अच्छे से दर्शन हो गए?
बहुत ही करीब से और बहुत ही अच्छे से। और अभी भी मैं आपसे बात कर रही हूँ ना, देखिए मेरे गूस बम्स ना सब जैसे उसी याद को ताजा करके एकदम से मेरी वही मेरे सामने वो आ रहा है। जैसे स्वामी जैसे ही आए ना, मैंने हाथ जोड़े और जैसे ही स्वामी की तरफ देखा ना, सबसे पहले तो स्वामी ने ऐसे हाथ जैसे करते हैं हाथ ना स्वामी कैसे, और उसमें मुझे ये जेस्चर लगा कि मुझे स्वामी कह रहे हैं तू आ गई। जैसे ही उन्होंने ये कहा ना तो मेरे आंखों से झरझर आंसू बहने शुरू हो गए। और साथ ही मैं क्या देखती हूँ कि उनकी आईज ना, वैसे इतनी बड़ी आईज नहीं नजर आती जब वो आपको देखते हैं, इतनी बड़ी बड़ी आईज मतलब वाइड हो गई आईज, और उसमें एक ओशन, लहरें, ब्लू ओशन और लहरों की तरह जैसे स्वामी की आईज थी। और वो देख के तो मैं एकदम, मेरा पूरी जो शरीर है ना, एकदम पूरी बॉडी मेरे को एकदम से सनसनाहट सी होगी कि ये स्वामी के क्या दर्शन हुए मुझे। और एक उन्होंने जब ऐसे कहा और मुझे एहसास हुआ कि स्वामी ने मुझे पहचाना, और वही चीजें मेरे को दोबारा से फिर रिवाइव होनी शुरू होगी जो मैंने गाड़ी में सुनी थी लीलाएं स्वामी की, तो मैं एकदम से नतमस्तक हो गई। उसके बाद तो मुझे लगा कि मैं तो और कहीं नहीं जाने वाली, मेरा जो लास्ट वो कहते ना एक अंतिम पड़ाव वो यही है। स्वामी ने फर्स्ट टाइम में ही मुझे वो ने दर्शन कराए कि जिसको मैं उस टाइम बियर नहीं कर पाई। एक ह्यूमन बीइंग, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग कहां से उसको बियर करता है, उस आभा, उस दिव्यता को सहन करने की वो नहीं थी। तो उसका क्या हुआ, रोती गई, बस रोना ही एक और रह गया। इतने में स्वामी चले गए।
और जब वहां से आपने दर्शन कर लिए, आपने वो पा लिया जो उन्हें आपको देना था, उसके बाद आप जब बाहर आई तो उसी वो ट्रांस जैसी अवस्था में थी?
तब वो ट्रांस में ही थी, और ट्रांस से भी जब बाहर आई ना, भजन होते गए होते गए, तो उसमें यही क्यूरियोसिटी थी कि मैं सबके साथ ये चीज शेयर करूं कि मुझे यहाँ आके जो स्वामी ने दर्शन दिए हैं, पता नहीं स्वामी ने मुझे अपने फोल्ड में लेना था तब, जो ये दर्शन दिए स्वामी ने मुझे।
बिल्कुल बिल्कुल,
क्योंकि मैं तो आपको बताया बिल्कुल ब्लैंक थी, मुझे स्वामी के बारे में कुछ नहीं पता था, और ना ही मैं किसी गुरु में या ऐसे विश्वास करती थी। मैं चरण स्पर्श करना या किसी गुरु को मानना मुझे नहीं लगता था, मैं एक देवी माँ को मानती हूँ।
हाँ जी,
तो वही मेरे लिए सब कुछ है। लेकिन मुझे तो साईं माँ के यहीं पर दर्शन हो गए जब उन्होंने अपना ये स्वरूप दिखाया, तो मुझे तो ये लगा कि कब मेरे को मेरे बच्चे और मेरे हस्बैंड मिले, तो उनको मैं बताऊं कि आज मेरे साथ क्या मिरेकल हुआ। एक मिरेकल ही था मेरे लिए वो।
उस बारे में जब आपने आके अपनी फैमिली को बताया तो उनकी प्रतिक्रिया क्या रही होगी?
मेरे साथ साथ स्वामी ने वहां भी सेम ऐसी ही प्रतिक्रिया दिखाई, वो उनको दर्शन दिए तो उनका भी सेम यही, मेरे बच्चे इवन उस टाइम जो मेरा बड़ा बेटा था वो 16 साल का था और छोटा बेटा 14 साल का था,
दोनों दर्शन के लिए आए,
दोनों हमारे साथ दर्शन के लिए आए थे
जी।
तो मैं तो इन तीनों की वेट कर रही थी कि कैसे ही आए और मैं इनको बताऊं और इनके इनका भी सुनूं कि कुछ इनके साथ भी ऐसा हुआ है कि कहीं मेरी अकेली के साथ। तो हस्बैंड ने भी मेरे को बताया, भाई मुझे तो आज ऐसे लगा कि मेरा तो जो तलाश थी वो यहां आके खत्म हो गई है, अब इसके बाद मेरे लिए और कुछ नहीं है। बच्चे आए तो बच्चों से मैंने कहा, बच्चों तुम्हारा कैसा, मैंने सबसे बाद में बताया, पहले उनसे पूछा
जी।
तो बच्चे भी कहते मम्मी आनंद आ गया, स्वामी ने तो ऐसे दर्शन दिए, हमें तो लगा, बच्चे हैं फिर भी उन्होंने एक्सप्रेस किया कि हमें लगा कि बस मजा आ गया, आज तो भगवान के दर्शन हो गए, ये उनके वर्ड थे।
पहले दर्शन में,
पहले दर्शन
सबके मन में एक ही फीलिंग आई कि भगवान के दर्शन हो गए,
भगवान के दर्शन हो गए।
जब अपनी जगह पे अंबाला में लौट के गए, कहीं इस चीज में कुछ भी कमी आई या इन्होंने जो जगह आपके मन में बना ली थी वो वैसे की वैसे बरकरार रही?
नहीं, वो जगह तो वैसे ही बरकरार रही। इवन मैं आपको बताऊं कि जब यहां से हमने आगे मैसूर ऊटी वगैरह जाना था ना, तो हमारा तो पहले यहीं से ही हो गया कि हम कहीं भी जाएं लेकिन व्हाइट फील्ड हमें वापस आना स्वामी के दर्शन करने। हम एक हफ्ता 10 दिन जितने भी साउथ में हैं डेली हमें स्वामी के दर्शन करने हैं।
अच्छा।
हाँ, तो हमने वो ट्रेन का सब कैंसिल करके टैक्सी करते थे यहां से व्हाइट फील्ड से, तो बेंगलोर सारा घूम के रात शाम को व्हाइट फील्ड जब शाम के दर्शन होने हैं, फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग जाना है मैसूर जाना है, तो वहां से पूरी कोशिश है कि शाम तक आए नहीं तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग के स्वामी
के
दर्शन
वापस।
हाँ जी, तो ये हमारा यहाँ पर हम जितने दिन रहे हैं, आए थे एक दिन के लिए, रहे 10 दिन के लिए वहां पर, और वहीं से सारा ट्रिप हमने किया। उसके बाद जो हमारे अंदर चेंजेस आए, हमें जो स्वामी के दर्शन करते करते महसूस हुआ, फिर हम उसी चीज को लेके साथ हम अंबाला गए।
वापस जाने के पहले ही इतना ट्रांसफॉर्मेशन आप महसूस कर चुके थे
क्योंकि जब हमारी तो इच्छा थी नहीं, मैं आपको पहले ही बता रही हूँ, जब भगवान ने ही इतनी कृपा कर दी तो उनकी कृपा तो अनंत है, उसके आगे तो कुछ भी नहीं और हो सकता। जब उनकी हम पर इतनी कृपा बरसी तो हमारा तो चेंज आना एक ऑब्वियस बात होती है ना, कहते होना जरूरी है।
अभी आप सुन रहे थे हमारा लोकप्रिय कार्यक्रम साई का प्यार जीवन आधार।
आज इसके अंतर्गत हमने श्रीमती सरिता शर्मा जी के साथ हुई हमारी भेंट वार्ता का पहला भाग प्रस्तुत किया था। इस वार्ता का अगला भाग हमारे अगले प्रसारण में प्रस्तुत किया जाएगा।
टीम रेडियो साई की ओर से श्रीमती शर्मा से मुखातिब थी श्रीमती नीता जी बनर्जी। ये भेंट वार्ता रेडियो साई के स्टूडियो में 30 जनवरी सन 2018 को रिकॉर्ड की गई थी।
इसी के साथ हमारे साई प्रेमवाणी कार्यक्रम का समापन होता है। उम्मीद है हमारा आज का कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। अपने सुझावों को हम तक ईमेल या व्हाट्सएप द्वारा जरूर भेजें। हमारा पता है listener@radiosai.org listener@radiosai.org। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9393258258 9393258258। हिंदी भाषा में हमारी ये सभी प्रस्तुतियाँ YouTube पर भी उपलब्ध हैं। इन्हें वहाँ देखने सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल रेडियो साई हिंदी को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव देना न भूलें। हमारी वेबसाइट पर हमारे कार्यक्रमों को अपनी इच्छानुसार सुनने के लिए आप radiosai.org/hindi पर इनको डाउनलोड भी कर सकते हैं।
हम सब पर हमेशा असीमित प्रेम बरसाने वाले भगवान के चरणों में हम हमारा सर्वस्व अर्पित करते हुए आप सभी से विदा लेते हैं। सधन्यवाद। जय साईं राम।